फिर इसके बाद आप देखिए कि अगला हिस्सा जो है आयत नंबर 19 से लेकर 28 तक, इसमें अल्लाह ताला ने अहले मक्का के अकीदा शिफात की तर्दीद की है और बताया है कि तुम्हारे वो बुत, वो देवियां जिनको तुम समझते हो कि ये तुम्हें अल्लाह की पकड़ से बचा सकते हैं, तुम्हारे सारे बुत जो हैं ये फर्जी हैं। और आप देखिए कि उनके अकीदा शिफात को अल्लाह ताला ने झुटलाया है, और कैसे झुटलाया है, बड़ा जबरदस्त अंदाज है। फरमाया अफारे तुमुल्लात वल उज्जा व मनात सालिसत अल उखरा, क्या तुमने देखा, असल में क्या तुमने देखा से मुराद क्या है, क्या तुमने गौर किया। और सवालिया अंदाज हमेशा सोचने समझने पर आमादा करता है, सवालिया अंदाज हमेशा इंसान को जो है वो बसीरत की, तदब्बुर की दावत देता है और बड़ा मुअस्सर अंदाज होता है। पूछा जा रहा है कि अब जरा तुम बताओ तो सही कि तुमने कभी गौर भी किया किस चीज पर, अल्लाता लात वल उज्जा और उज्जा व मनाता और मनात पर, और साथ ही क्या कहा कि मनात का जिक्र करके अस्सालिसत अल उखरा, तीसरा और आखिरी। अब हम देखते हैं कि ये लात, उज्जा और मनात, यहाँ पे तीन देवियों का जो है वो जिक्र किया गया है। तो आप देख लीजिए कि तीन देवियां जिनको बतौर मिसाल पेश किया गया, ऊपर आपने तीन चीजें पढ़ी, क्या तीन चीजें हैं, नंबर एक वही कुरान की कैफियत, वही की अजमत, दूसरा जिब्राइल अलैहिस्सलाम और तीसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीन चीजों को बहुत नुमायां करके आपने पढ़ा समझा। अब यहाँ पे तीन देवियों का जिक्र, वैसे तो अहले मक्का की बहुत सी देवियां थी लेकिन तीन देवियों को बतौर मिसाल यहाँ पे रखा गया, जो मक्का, ताइफ, मदीना और मदीना के इर्द गिर्द के इलाकों में लोग जो थे उनको पूछते थे। अल्लाह ताला पूछ रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं कि कभी तुमने अकल से काम भी लिया, सोचा भी कि ये जो तुम्हारी देवियां हैं अल्लाह के मामलात में, जमीन और आसमान की खुदाई में, इन देवियों का भी कोई थोड़ा सा भी हिस्सा है। और सबसे पहले जिक्र किसका है, लात का। तो लात जो है ये किसे कहते हैं, लात, लात कहते हैं। एक राय तो ये है कि लात जो है ये क्या है कि लात ये अल्लाह की तानीस है, अल्लाह लफ्ज है ना, तो राय ये है कि लात का लफ्ज जो है ये अल्लाह ही से निकला है और तानीस है। असल में ये लफ्ज जो था अल्लाहतुन, अल्लाहतुन था, अल्लाह से अल्लाहतुन, जिसे अल्लात कर दिया गया। और फिर इसके बाद दूसरी राय ये है कि ये लफ्ज लवा यलवी से निकला है और इसके मानी होते हैं मुड़ना, किसी की तरफ झुकना। तो अहले मक्का इबादत के लिए लात की तरफ रुजू करते थे, इसके आगे झुकते थे, इसका तवाफ करते थे, इसलिए इसको लात कहा जाने लगा। और तीसरी राय क्या है कि लात इसको शद के साथ पढ़ा जाए, तशदीद ता, लत्ता या लुत्तु। तो इसके मानी क्या होते हैं कि लथेड़ देना, लत्ता या लुत्तु, लथेड़ देना, घोल देना। कहते हैं कि अगर इसको पढ़ेंगे जैसे इसम फाइल के तौर पर, कहते हैं ये एक नेक आदमी था, हाजियों को सत्तू घोल घोल कर पिलाया करता, जब ये मर गया तो लोगों ने इसकी कब्र को इबादतगाह बना लिया, फिर इसके मुजस्मे और बुत बन गए। तो ये है कि क्योंकि ये शख्स जो था ये काम करता था कि घोल घोल कर सत्तुओं को पिलाता था, तो लोग जो थे फिर इसको बाद में याद करने लगे, इसकी इबादत करने लगे। बहरहाल मुफस्सरीन क्या कहते हैं कि जो पहली राय है ना वो तो ठीक है, लेकिन ये जो लत्ता या लुत्तू और सत्तू वाली बात और सत्तू पिलाने वाला आदमी, वो कहते हैं ये बात ठीक नहीं है। क्यों, वो कहते हैं कि असल में यहाँ पे मुअन्नस के सीगे इस्तेमाल किए गए हैं, लात, उज्जा और मनात। और अगर जो है लात यानी शद वाला इसको समझा जाए और उस मर्द को लिया जाए तो फिर ये मर्द बन जाएगा, तो यहाँ पे अल्लाह ताला देवियों का जिक्र कर रहे हैं, तो ये वाली बात नहीं है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये लात किसका बुत था। ये ताइफ में था, इसका स्टैचू जो ताइफ में पड़ा हुआ था, और बनु सकीफ के कबीले के लोग जो थे वो इसके मोतकिद थे। अबरा की फौज ने जब खाना काबा को तोड़ने के लिए मक्का पर चढ़ाई की थी तो कहते हैं कि उस वक्त भी मक्का के लोगों ने अपने इस माबूद को बचाने के लिए, क्योंकि इसका आस्ताना बना हुआ था ना, इसका बड़ा सा स्टैचू, तो उसको बचाने की खातिर क्या किया था कि मक्के का रास्ता बताने के लिए उसको बदरके फराहम किए थे ताकि वो लात को हाथ ना लगाए, कि खुद अपने पास से ऐसे उन्होंने सवार और सवारियां दे दी थी कि हमारा ये जो लात का बुत है ना इसको नहीं हाथ लगाना, और खुद मदद की थी, बस इसको नहीं छेड़ना। और आप देख लें, हालांकि तमाम अहले अरब जो थे वो खाना काबा को अल्लाह का घर भी समझते थे, अहले सकीफ भी समझते थे, लेकिन उस बुत की इनके ऊपर अजमत कितनी थी। तो बहरहाल लात का जो बुत था ये किनका बुत था, ये ताइफ वालों का। फिर इसके बाद दूसरा हमें जिक्र मिलता है वल उज्जा, और उज्जा का लफ्ज जो है ये क्या है, कहते हैं कि उज्जा ये अल्लाह के सिफाती नाम अजीज से है, और ये फिर अज्जा की तानीस बन जाता है। जैसे अल्लाह का नाम है ना अजीज, और इज्जत के मानी भी आते हैं, तो उज्जा इज्जत से है, और इसके मानी क्या है, इज्जत वाली। उज्जा यानी मोनस के तौर पर है, और ये कुरैश की खास देवी थी, और इसका भी स्टैचू इस्तहान जो था मक्का और ताइफ के दरमियान वादी नखला में हुरात के मकाम पर वाकया था। और बाज ये कहते हैं कि ये गतफान में एक दरख्त था जिसकी इबादत की जाती थी, और बाज ये कहते हैं कि ये एक औरत थी, एक शैतान औरत थी जो दरख्तों के झुंड में रहती थी, और यहाँ पे फिर कभी कभार जो है यहाँ पर आती भी थी ना, यानी एक औरत थी जो यहाँ पे रहती थी, और वो क्या करती थी, कहते हैं कि उज्जा एक शैतान औरत थी, वो बतने नखला में बबूल के तीन दरख्तों के पास आती जाती थी। और ये बात भी आपको याद होगी कि जो है वो इब्ने हशाम की क्या रवायत है कि अबू ओहैहा, हा हलवे वाली, अबू ओहैहा जब मरने लगा तो अबू लहब इसकी इयादत के लिए गया, देखा कि वो रो रहा है। अबू लहब ने कहा कि रोते क्यों हो, अबू ओहैहा कहने लगा क्या, यानी उसने अबू लहब ने पूछा क्या मौत से डरते हो, हालांकि वो सबको आनी है, तो उसने कहा खुदा की कसम मैं मौत से डरकर नहीं रोता, बल्कि मुझे ये गम खाए जा रहा है कि मेरे बाद उज्जा की पूजा कैसे होगी। अबूला बोला उसकी पूजा ना तुम्हारी जिंदगी में ना तुम्हारी खातिर होती थी और ना तुम्हारे बाद उसे छोड़ा जाएगा। अबू ओहैहा ने कहा अब मुझे इत्मीनान हो गया है कि मेरे बाद कोई मेरी जगह संभालने वाला है। तो ये जो है ये इनका दूसरा जो था वो बुत था, और आप देख लीजिए कि किस तरह से वो बुतों को बनाते थे और कैसे उनकी जो थी वो पैरवी करते थे। और बाद ये कहते हैं कि ये संगे अबियत था, ये एक सफेद पत्थर था जिसको वो पूजते थे, और ये कुरैश और बनू कनाना का खास माबूद था। तो बहरहाल जो है वो कुरैश के लोग और कनाना के लोग इसको जो थे वो पूजते थे, और बड़े एहतमाम से जो थे वो इसको पूजते थे। और आपको ये बात भी याद होगी कि जो है वो गज़वा उहद में जब मुसलमानों को जाहिरी तौर पर शिकस्त हो गई थी तो उस वक्त अबू सुफियान ने भी नारा लगाया था ना कि हुबल का नाम बुलंद हो, तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो कहा था सहाबा को कि जवाब दो अल्लाहु आला व अजल। फिर अबू सुफियान ने कहा था लनल उज्जा वला उज्जा लकुम, तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको यूं जवाब दो कि अल्लाहु मौलाना वला मौलाकुम। तो वो लोग क्या करते थे, वो उज्जा को भी अपना जो था वो खुदा मानते थे, बुत मानते थे, पूजा करते थे। फिर तीसरा नाम क्या था, वह मनाता। मनात का लफ्ज जो है ये किससे निकला है, कहते हैं कि मनात या तो मनी यमनी से है और इसके मानी है बहाने के, जैसे मनी नहीं होती मने ही नहीं यमना बहाई जाती है ना, तो ये लफ्ज बहाने के मानी में आता है। और तकर्रुब हासिल करने के लिए लोग क्या करते थे, अक्सर इसके पास जाकर जानवर ज़िबा किया करते और इसका खून जो थे वो बहाया करते थे, जानवर का खून। और ये बुत मक्का और मदीना के दरमियान में था, तो खास तौर पर औस और खजरत के लोग इसकी पूजा करते थे और कबीला खुजा के लोग। हत्ता के हज और उमरा करने के बाद क्या करते थे कि वापस आकर बकायदा इसका तवाफ करते और फिर नजरे न्याज चढ़ाते, जैसे जिस तरह लबैक लबैक की सदाएं बुलंद करते हुए वो हरम की तरफ जाते थे ना, तो इसी तरह वहां से वापसी पर लबैक लबैक की सदाएं बुलंद करते हुए मनात की जियारत की नियत कर लेते, बस सही नहीं करते थे बाकी फिर सब कुछ करते थे। तो कहा कि अस्सालिसतुल उखरा, ये जो है ये तीसरा है, उखरा और आखिरी। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अब जरा बताओ तो सही कि तुमने कभी लात ताइफ वालों से कहा जा रहा है, उज्जा कुरैश वालों से कहा जा रहा है, और तीसरी एक और देवी सालिसतल उखरा, तीसरी एक और देवी और वो कौन सी है, मनात, ये मक्का और मदीना के जो दरमियान थी। तो बताओ कि कभी तुमने इनकी हकीकत पर गौर भी किया, इनकी हकीकत कैसी हकीकत थी कि खुद ही इनके इन्होंने स्टैचू बना लिए और फिर इसकी जो थी वो पूजा करने लगे, तो कितने अफसोस की बात है। और इन बुतों की बर्बादी के बारे में आप देखें कि कहते हैं कि इस सिलसिले में क्या है कि सबसे बड़ा बुत इनका लात का था, और लात का बुत जो था वो हुआ क्या कि जब लोग मुसलमान होने लगे तो रसूल अल्लाह के पास जो थे कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि 3 साल तक कम से कम उनका लात का बुत जो है ना उसको बाकी रहने देना चाहिए। आपने इनकार किया, आपने अबू सुफियान बिन हरब और मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह को भेज दिया रजी अल्लाह अन्हुमा को, और उन्होंने इस बुत को गिरा दिया और ताबड़तोड़ हमले करके उनको खत्म किया। बनू सकीफ के लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, क्या कहा, कि हम बुतों को अपने हाथ से नहीं तोड़ेंगे और हमसे नमाज पढ़ने के लिए भी ना कहा जाए। तो आपने फरमाया कि बुतों को तुम अपने हाथ से ना तोड़ो, ये बात तो हम मान लेते हैं, रही नमाज तो वो पढ़नी ही पड़ेगी, इस दीन में कोई खैर नहीं जिसमें नमाज ना हो। फिर उज्जा की काट पीट के बारे में आप देखें कि फतुल बारी में जो है लिखा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमुल फतह में यानी फतह मक्का के साल हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को भेजा, उन्होंने इसे गिराया। और कुर्तुबी तफसीर में ये लिखा है कि उज्जा एक शैतान औरत थी, जिन्नी थी, गोया के बतने नखला में 3 बबूल के दरख्तों के पास आती जाती थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को भेजा कि बतने नखला में जाओ, वहां बबूल के 3 दरख्त हैं, पहले दरख्त को काट दो, उन्होंने उसको काट दिया। जब वो वापस आए तो आपने फरमाया तुमने कुछ देखा, उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं देखा। फरमाया अब दूसरे दरख्त को काट दो, वो वापस गए और दूसरे दरख्त को काट दिया। फिर हाजिर खिदमत हुए तो आपने फिर वही सवाल किया, उन्होंने कहा मैंने अब भी कुछ नहीं देखा। फरमाया जाओ तीसरे दरख्त को भी काट दो। जब वो तीसरे दरख्त के पास आए और उसे काट दिया तो एक हबशी औरत को देखा जो अपने बाल फैलाए हुए थी और अपने हाथों को मोंडे पर रखे हुए थी और अपने लंबे लंबे दांतों को घुमा रही थी, और इसके पीछे इसका मुजावर भी था जिसका नाम दुबिया था। हज़रत खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने इस शैतान औरत के सर पर ज़रब मारी और इसका सर फाड़ दिया और मुजाविर को कत्ल कर दिया। फिर वापस आकर पूरा वाक्या बयान किया, आपने फरमाया यही औरत उज्जा थी, आज के बाद कभी भी इसकी इबादत नहीं की जाएगी। और अलविदाया नहाया में है कि जब हजरत खालिद बिन वलीद वहां पहुंचे रजी अल्लाह अन्हो तो देखा कि एक नंगी औरत बाल फैलाए हुए बैठी है, अपने चेहरे और सर पर मट्टी डाल रही है, उसे उन्होंने तलवार से कत्ल कर दिया। और फिर रसूल अल्लाह की खिदमत में आकर वाक्या सुनाया तो आपने फरमाया कि ये औरत उज्जा थी। तो पहले तो उज्जा को सफेद पत्थर से बनाया और फिर मुशरिकीन जो थे वो आने लगे इसके पास, और फिर जो है वो जैसे बहुत से लोगों ने फिर इस पर जो थी वो क्या करना शुरू किया कि इबादत करनी शुरू कर दी। तो बहरहाल फिर हुआ क्या कि जू जू इस्लाम फैलता चला गया, खाना काबा के अंदर भी तो बहुत से बुत थे ना, 360 उनको भी तोड़ दिया गया और इन तीनों पर खास तौर पर बात की जा रही है कि कभी तुमने इन तीनों की हकीकत पर गौर किया। एट द सेम टाइम यहाँ पे हम अपना भी जायजा लेते जाएं कि आज मुसलमान क्या करते हैं कि बाज ऐसे उन्होंने मजार बनाए हुए हैं कि उस शख्स का वहां के इलाके के लोगों को कहीं खबर नहीं होती और उस शख्स के बारे में भी कुछ पता नहीं होता। जब वो मर जाता है कुछ अरसे बाद वो कोई किसी को ख्वाब नजर आता है और फिर वो वहां पे एक इमारत बन जाती है और फिर उसके बाद जो है वो मजार की शक्ल में लोग उसके इर्द गिर्द जो है वो जमा होना शुरू कर देते हैं, फिर देगे और फिर ढोल ढमके और बहुत कुछ जो है वो शुरू हो जाता है। तो बहुत सी चीजों की हकीकत जो है वो कुछ भी नहीं होती। तो याद रखिएगा कि ये शिर्क की एक बहुत बड़ी किस्म है कि इमारतें, कुब्बे और दरख्त जो है या बुतों के जो है उनकी शक्लें बनाकर जो है, या कोई ऐसे लोग जो बहुत अच्छे थे वो दुनिया से चले गए और फिर उनकी कब्र जो है उसको मजार बनाकर फिर बाद में लोग उसको पूजना शुरू कर दें। तो ये चीज क्या है कि ये भी शिर्क के दरवाजे खोलती है। और अहले मक्का भी ये समझते थे कि ये इनकी देवियां जो हैं वो अल्लाह के यहां इनकी जो है शिफात करवा सकती हैं। और आप देखिए कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी थी कि उन्होंने जो है वो क्या किया था कि शिर्क के जितने भी मजाहिर थे ना उनका खात्मा किया था। और कैसे कि कुव्वत से पूरे अरब में शिर्क के ऐसी जितनी भी चीजें बनी हुई थी ना उन्होंने वहां के हाकिम को साथ मिलाया और फिर उनको जो है वो नेस्तो नाबूद कर दिया। इसी तरह फिर एक मरतबा सुल्तान अब्दुल अजीज ये जो वाली हैं नजद के और हिजाज के, मौजूदा जो सऊदी हुक्मरान हैं इनके वालिद और इस ममलकत के जो बानी हैं, उन्होंने भी तमाम पुख्ता कब्रों को और कुब्बों वाली जो इमारतें थी उनको ढाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का अहया किया। और इस तरह जो है वो सऊदी अरब में इस्लामी अहकाम के मुताबिक ना कोई पुख्ता कब्र है और ना कोई मजार, ना दरबार, ना आस्ताना कि जिसकी परस्तिश की जाती हो, क्योंकि कब्र भी जो है कब्र परस्ती भी जो है वो शिर्क के दरवाजे जो है वो खोलती है। तो बहरहाल अब जाना और वहां पे जाकर देगे चढ़ाना और वहां पे सजदे करना और वहां से बेटे मांगना और वहां से मुरादे मांगना, और अक्सर पढ़े लिखे लोगों में भी ये जहालत पाई जाती है और अनपढ़ लोगों में भी, तो इस्लाम इसकी जड़ों को काटता है। फिर अगला सवाल उनके सामने रखा है अले मक्का के अलकुमुज़्ज़कर वलहुल उन्था। सवाल क्या है कि क्या तुम्हारे लिए हैं बेटे और इसके लिए बेटियां? क्योंकि अहले मक्का जो थे वो क्या करते थे कि देवियों को, ये जो देवियां थी ये तीनों लात, उज्जा और मनात और बाकी देवियां भी, उनको वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेटियां करार देते थे, कभी वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते थे। और खुद उनके पास जब बेटी पैदा होती थी तो उसको जिल्लत का जरिया समझते थे। तो अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि तुम्हारे लिए तो हों बेटे और उसके लिए हों बेटियां। तिलका इजन किस्मतुन दीजा, तिलका ये इजन तब तो के फिर तो ये क्या है किस्मतुन, किस्मत, किस्मत का मतलब क्या है काफ सीन नीम और इसके मानी होते हैं तकसीम करना, हिस्सा बांटना। और किस्मतन यहां पे मजदर है। तो अहले मक्का क्या करते थे कि वो उन्होंने ना जैसे कोई चीज बांटनी होती थी तो तीर होते थे उनके पास और तीरों के जरिए जो थे वो उनको वो बांटते थे। तो हर एक का हिस्सा अलग कर देना, तकसीम करना भी इसी से है कि फिर ये बांट जो है कैसी है दीजा, और दीजा जो है द्वाद या जे से है और इसके मानी होते हैं बेइंसाफी के। बेइंसाफी के लिए कुरान में 6 लफ्ज आए हैं और ये इसका आखिरी हिस्सा है, आखिरी दर्जा है कि दीजा जुल्म करना, हक कम देना, नाकिस और जालिमाना तकसीम करना। सारे मुंजद ने ये लिखा है कि अपने और दूसरों के हकूक मुतय्यन करते वक्त तमाम इंसाफ के तकाजों को बलाए ताक रखना, धांधली करना कि अपने लिए ज्यादा और दूसरों के लिए कम। तो बाजा दीजा के फिर क्या मानी है कि हुकूक की तकसीम में जो है वो नाकिस तकसीम करना, भद्दी जालिमाना, तिलका इजन किस्मतुन दीजा, इन्हिया इल्ला अस्माउन, नहीं वो मगर अस्माउन नाम ही नाम है, ये जो इनके देवी और देवता और इनके जो बुत थे इनकी कुछ भी हकीकत नहीं। अस्माउन, अस्माउन इस्म की जमा है और सीन नीम वॉस का रूट है। समई तुमुहा, समई तुमुहा के मानी क्या है, जो घड़ लिए हैं तुमने, तो अस्माउन इस्म है और समई तुमुहा फेल है, इसका रूट भी वही है सीन नीम वॉ, कि ये तुमने खुद नाम रख लिए हैं, कोई नकली या अकली दलील से नहीं साबित। सब नहीं तुमूहा, इनके नाम घड़ लिए हैं तुमने, मैंने ये नहीं कहा के रख लिए, घर लिए क्यों कहा, मीम पर शब्द है ना, सब नहीं तुमूहा, तो मानी क्या है कि लोगों तुमने खुद ये नाम जो है वो घड़ लिए हैं, बना लिए हैं, अंतुम तुमने आबाकुम और तुम्हारे बाप दादा ने, मानजल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, नहीं नाजिल की अल्लाह ने इसकी कोई भी सुल्तान, तो अल्लाह ने इसकी कोई सनत थोड़ी नाजिल की है। सुल्तान के मानी क्या है कि कोई भी दलील नहीं है, कोई आसमानी सहीफे से ये बात पता नहीं चलती। इयत्तबिउना इल्ला जन्ना, नहीं वो पैरवी करते इल्ला जन्ना मगर गुमान की, तो ये लोग क्या करते हैं, गुमान ही की पैरवी करते हैं, और गुमान जो है, गुमान किसे कहते हैं, गुमान किसे कहते हैं, आप गुमान की तारीफ जो है वो पढ़ चुकी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तारीफ आप दोबारा लिख लें, इय्याकुम वज़न्नी फ़इन्ना ज़न्ना अकज़बुल हदीस, बदगुमानी से बचो क्योंकि ये बदगुमानी बातों में सबसे झूठी बात है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये हक की पैरवी नहीं करते, ये गुमान के पीछे जो है ये चलते हैं, और गुमान क्या है कि गुमान की कुछ भी हकीकत नहीं है। आप याद रखिएगा कि आयत नंबर 23 में जो है आप क्या पढ़ रही हैं, अलहुदा, आखिर में अलहुदा भी आएगा, तो यहां पे जन जो है उसका ओपोजिट आया है। क्या फरमाया, मा अंजलल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने इसकी कोई दलील थोड़ी नाजिल की है, इयत्तबिउना इल्ला जन्ना, ये गुमान की पैरवी करते हैं, वमा तहवल अनफुस, वमा और मान जो तहवा ख्वाहिश करते हैं, अल अल अनफुस नफ्स, तो इनके दिल इनके नफ्स जो भी ख्वाहिश करते हैं बस ये अपनी ख्वाहिशात नफ्स के मुरीद बने हुए हैं। एक तो क्या है कि झूठ की पैरवी करते हैं, कुरान को मानना नहीं चाहते, काहिनों के पीछे लगे हुए हैं, नजूमियों के पीछे लगे हुए हैं, अपने बाप दादा के पीछे लगे हुए हैं, अपने गुमान की पैरवी करते हैं कि हमारे बाप दादा ही ठीक थे ना, कोई सनद इनके पास नहीं है। तो दो बातें यहाँ पे कही, गुमराह होने के लिए दो वजूहात हैं, एक जन की पैरवी और दूसरा ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी, और ये दो चीजें हमेशा इंसान को जो है वो गुमराही की दलदल में लाकर जो है वो छोड़ देती हैं। नफ्स की जमा अनफुस, वलकद जाअहुम मिन रब्बिहिमुल हुदा, और तहकीक आ गई है इनके पास इनके रब की तरफ से अलहुदा। तो जन की बिलमुकाबिल अल्लाह ने अलहुदा भेज दी, और ये हवा की पैरवी करना चाहते हैं और अल्लाह ने तो अलहुदा भेज दी, और अफसोस के लोग जो है वो कुरान की कदर ही नहीं करते। आप देख लें कि आज भी लोग कहते हैं जी फिल्मों से भी हम जो है ना वो हमें फिल्मों से भी नसीहत पता चलती है, अफसानों से नाफलों से हमें इबरत मिलती है, हम सीखते हैं, और नहीं सीखना चाहते तो कुरान से नहीं सीखना चाहते, खुराफात बेहुदा बातें इधर उधर की बातें उससे जो है कहते हैं कि हम बहुत लर्न करते हैं लेकिन कुरान से लर्न नहीं करते। तो यहाँ पे अलहुदा का लफ्ज जो है ये किस लिए आया है, अलहुदा का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुआ है कि अल्लाह ताला ने जो है वो क्या किया, इनको हदायत दे दी, इनको इनके पास नबियों को भेजा और किताबें भेजी, फिर फरमाया अमलिल इंसानी मा तमन्ना, कि क्या इंसान के लिए है जो इसने तमन्ना की, कि इंसान जो आरजू करता है क्या वही इसके लिए है, कि इंसान जो कुछ चाहे क्या वही हक है। तमन्ना के मानी क्या है, मीम नून या, और ये लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है आरजू के लिए, ख्वाहिशात के लिए, तो उमनिया पढ़ चुकी है ना पहले भी, तो इंसान की ख्वाहिशात और आरजुएं तो बहुत ज्यादा हैं। इंसान शिर्क करना चाहता है, इंसान अपने नफ्स की पूजा करना चाहता है, तो क्या नफ्स की पूजा करना हक है, अलहुदा है, या वो जो अल्लाह ने भेजा है। फलिल्लाहिल आखिरत वल उला, बस अल्लाह के लिए है आखिरत اور اولا. آخرت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آخرت کے معنی ہوتے ہیں آخری چیز, اور یہاں مراد کیا ہے؟ آخرت. تو آخرت بھی اللہ کے لیے ہے اور اولا بھی اللہ کے لیے ہے, تو آخرت تو بعد میں آئے گی اور اولا پہلے ہے. آخرت کو یہاں پہ پہلے کہہ دیا گیا اور اولا کو بعد میں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ذکر پہلے کیا اور پھر اولا جو ہے, اولا دنیا ہے نا, تو اولا جو اول اول کا جو ہے وہ مؤنث ہے اولا, تو پہلے دنیا ہے اور آخرت جو ہے وہ اس کے بعد ہے, بعد میں دوسری زندگی آئے گی نا. تو کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے یہ والا ذکر؟ تو اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتانا چاہتے ہیں, یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں تم غور تو کرو, تمہاری یہ خام خیالی ہے کہ تم اپنی خواہشات کی پوجا کر رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ دنیا تمہاری ہے. یاد رکھنا, کان کھول کر سن لو, آخرت بھی اللہ کی اور دنیا کی بھی اللہ کی. تو پہلے آخرت کا ذکر اس لیے کیا کہ تاکہ ان کو سزا کا تصور ہو سکے, جب وہ شرک کرنے پر پکڑے جائیں گے تو اس کا وہ تصور کر سکیں کہ فللہ الآخرت, بس اللہ ہی کے لیے آخرت, اور ساتھ ہی کہا کہ والاولا, اور دنیا بھی اللہ ہی کی ہے, اللہ چاہے تو کسی کو دے اور چاہے تو نہ دے. وَكَمْ مِن مَلَكٍ, اور کتنے ہی فرشتے ہیں. ملک کے معنی کیا ہیں؟ فرشتے. اور کتنے ہی فرشتے ہیں, اور یہ اس جنس ہے, فِي السَّمَاوَاتِ, آسمانوں میں, السما کی جمع ہے سماوات, لا تغنی شفاعتهم شیئن, نہیں فائدہ دے گی ان کی شفاعت کچھ بھی. کتنے ہی فرشتے ہیں کہ ان کی شفاعت کچھ کام نہیں آ سکتی, الا مگر من بعد ان یاذن اللہ, مگر بعد اس کے کہ اللہ ہی اجازت دے. نمبر تین, لمن یشاء, جس کو وہ چاہے, جس کو وہ شفاعت کی اجازت دے, جس کو وہ چاہے, ویرضا, اور اس کو وہ پسند بھی کرے. یہاں پہ چار باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں. پہلی بات کیا کہ تمام فرشتے بھی اللہ کے پاس سفارش کسی کی کرنا چاہیں, شفاعت کرنا چاہیں, تو وہ شفاعت کر نہیں سکتے, ان کی شفاعت فائدہ ہی نہیں دے سکتی. وہ کم, یہاں پہ کم جو ہے تقصیر کے لیے ہے. تقصیر کا مطلب کیا ہے؟ ویسے ہوتا ہے نا کہ کم کتنا کے معنی دیتا ہے, کہ آپ پوچھتی ہیں کہ جیسے عرب میں آپ کوئی چیز جا کے خریدتی ہیں, پوچھتی ہیں کہ کم حاضر, کہ یہ کتنے ہیں اس کے پیسے. تو یہاں پہ کم تقصیر کے لیے ہے, کتنے کے لیے نہیں بلکہ کتنے ہی, یعنی بہت زیادہ فرشتے بھی جو موجود ہوں آسمانوں میں. تو پہلی بات کیا ہے؟ لا تغنی شفاعتهم شیئا, ان کی شفاعت بالکل بھی فائدہ نہیں دے گی. دوسری بات کیا ہے؟ الا من بعد یاذن اللہ, بعد اس کے کہ اللہ ہی کسی کو اجازت دے دے, کہ اگر اللہ اجازت دے دے تو وہ سفارش کر سکتے ہیں, اگر اللہ اجازت نہ دے تو وہ سفارش نہیں کر سکتے. اور یہ بات جو ہے آپ سورت نبا میں بھی پڑھ چکی ہیں پہلے بھی, کہ اور سورت یونس میں بھی پڑھ چکی ہیں. سورت یونس میں کیا ہے؟ ما من شفیع من بعد, ما من شفین الا من بعد اذنے, کہ اللہ کی اذن کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے سورت نبا میں اس کو پڑھا, تو وہ وہاں پہ کیسے آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے, کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت حال کیا ہوگا, کہ اس وقت حال یہ ہوگا کہ رب السماواتی والارضی وما بینہما الرحمانی لا یملکون منہ خطابا, کوئی بھی اللہ سے بات نہیں کر سکے گا. سورت نبا کی آیت 37 اور 38 میں کیا ہے؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن, کوئی بات نہیں کرے گا مگر جس کو اللہ رحمان اجازت دے. وہ رحم کرنے والا ہے, وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے, وہ کس کو اجازت دے گا؟ وقال صوابا, جو ٹھیک بات کرے. تو سورت نبا کی آیت 37 اور 38 بھی آپ سامنے لا سکتی ہیں دلیل کے طور پر. ذالک الیوم الحق 39 میں کہا کہ یہ حق کا دن ہے, زیادتی کا دن نہیں ہے. اللہ ایسے ہی نہیں اجازت دے گا کہ دنیا میں لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا, شفاعت کے عقیدے پر بیٹھے تھے اور اس دن ان کی سفارش ہو جائے اور ان اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو اجازت دے دے. تو یہ جو ہے نا, کہتے ہیں کہ شہید شفاعت کریں گے, انبیاء کریں گے, فلاں کرے گا, تو اصل بات یاد رکھیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ شفاعت فائدہ نہیں دے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک رحمان اجازت نہ دے, اللہ کی اجازت کے بغیر پتا نہیں ہل سکتا. اور سارے پیغمبر جو جلیل القدر پیغمبر ہیں وہ بھی سلم اللہم سلم یہ کہہ رہے ہوں گے, کجا یہ کہ کوئی سفارش کر سکے. اور تیسری بات کیا ہے کہ اللہ اس کو اجازت دے گا, لمن یشاء, جس کو وہ چاہے گا, چاہے تو اجازت دے چاہے تو نہ دے, اللہ کی مرضی ہے نا. جیسے دنیا کی کورٹ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جج کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا, کتنا ڈسپلن ہوتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جج جس کو چاہے اجازت دے, جس کو چاہے نہ دے, جس کو چاہے اس کی گواہی کو قبول کرنے سے انکار کر دے, اس کو نکال دے, جس کو وہ چاہے. اور چوتھی بات کیا ہے, وہ یرضا, کہ یرضا کے معنی کیا ہے, اور اس کو وہ پسند بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش سننے پر راضی ہو, اس کو پسند کرے. تو عقیدہ شفاعت کو سمجھنے کے لیے اگر آپ یہ آیت یاد کر لیں, سورت نبا تو آپ نے ویسے پورا 30واں پارہ حفظ کیا, آپ وہ آیتیں یاد کر لیں تو آپ کو, اسی طرح آیت الکرسی یاد کر لیں, آیت الکرسی کے اندر بھی ہے نا, اور آپ کو آیت الکرسی بھی آتی ہوگی کیونکہ فرض نمازوں کے بعد پڑھنا جو ہے رسول اللہ کی سنت ہے. تو اہل مکہ کے جو عقیدہ شفاعت تھا اس کی تردید کی جا رہی ہے, کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے بت, تمہاری دیویاں, یہ لات عزا اور منات, اور فرشتوں کو بھی وہ اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں اللہ کی پکڑ سے تمہیں بچا نہیں سکتے. پھر فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ, کہ بے شک یہ وہ لوگ ہیں, ان الذین یہ وہ لوگ ہیں, لا یؤمنون بالآخرۃ, یہ آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں, اسی لیے تو شرک کرتے ہیں اور عقیدہ شفاعت پر بیٹھے ہوئے ہیں. لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی, کیا کہا کہ آخرت کو نہ ماننا کیسے پتا چلتا ہے, کہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے, اور کیسے, تسمیۃ الانثی, نام عورتوں جیسے, کہ یہ لوگ فرشتوں کو دیویوں جیسے ناموں سے جو ہے وہ موسوم کر دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ ان کا کھلا کھلا جو ہے وہ شرک ہے. تو یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت ان کے عقیدہ شفاعت کی, ان کے شرک کی جڑیں کاٹ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بس ایسے نام رکھ لیے ہیں. اور کیونکہ وہ جو نام رکھتے تھے تو کیا ہے کہ جیسے اس طرح کے نام رکھ لیتے تھے کہ جس سے اس بات کا پتہ چلے کہ گویا کہ یہ ہستیاں یا یہ جو ان کے سٹیچو ہیں یا یہ جو ان کے بت ہیں ان کا اللہ کے ہاں جو ہے بہت بڑا مقام ہے. اور وہ لوگ کیا کرتے تھے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ فرشتے, انبیاء, نیک بندے ان کی اللہ کے پاس جو ہیں وہ سفارش کریں گے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہیں بتا رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں ان کی جو ہیں وہ غلط ہیں. اور یہاں پہ خاص طور پر پھر کہ لڑکیوں والے نام رکھ لینا, یہ جو کہا جا رہا ہے انسا, اور انسا جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ کس کے لیے آتا ہے, کہ عورتوں جیسے, تانیث کے لیے نا, مونس. تو اصل میں عورتوں کو ویسے وہ انہوں نے مقام نہیں دیا ہوا تھا, حقیر اور ذلیل سمجھتے تھے, لیکن یہ کہ کیسی ان کی یہ بانٹ تھی, یہ وہی والی بات ہے کہ یہ جو ان کی تقسیم ہے یہ تقسیم بڑی ہی بھونڈی تقسیم ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمْ, اور نہیں ان کے لیے اس کا کچھ بھی علم, ان کے پاس اس بات کا کچھ بھی علم نہیں ہے, حقیقت نہیں ہے ان کے پاس. تو کرتے کیا ہیں, اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ, وہ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا, اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا. اور آپ دیکھ لیں کہ گمان کی تعریف کو اگر آپ یاد رکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو اس سے ہمارے بہت سے مسائل جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں. کیونکہ گمان کیا ہے؟ اِیَّاکُمْ وَالظَّنِّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ. بدگمانی سے بچو کہ بدگمانی باتوں میں سب سے جھوٹی ہے. مثلا جو لوگ بدگمانی کرتے ہیں تو بدگمانی سے پھر ہوتا کیا ہے کہ لوگ غیبت کرتے ہیں، پھر تجسس کرتے ہیں، پھر لمز اور حمز اور بہت سی رسوا کن حرکتوں پر آمادہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح عرب کے ایک شاعر نے ظن اور علم کے فرق کو یوں واضح کیا، کیا کہا؟ کہ وَعَالَمُ عِلْمًا لَيْسَ بِالظَّنِّ انہو، کہا کہ میں علم پر مبنی بات کہتا ہوں جو ظن نہیں ہے. تو ظن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ظن گمان ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے. اور جیسے سورۃ الحجرات میں آپ نے پڑھا کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو کے بعض گمان پر گناہ ہوتے ہیں. اسی طرح سورۃ حاقہ میں آتا ہے کہ اہل مکہ کا سردار کیا کہتا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ سورت الحاقہ میں نہیں بلکہ سورت الحاقہ میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ نیک لوگ کیا کہتے ہیں، کہ انی زننتو انی ملاقن حسابیہ. اور جو برے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی ہمیں جنت ملے گی، تو وہ برا گمان کرتے ہیں. اچھا بھی ہوتا ہے گمان، برا بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر گمان جو ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں. تو کہا کہ گمان کی پیروی جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ انسان پھر بہت زیادہ جو ہے وہ گمراہیوں میں پڑ جاتا ہے، بہت زیادہ مشکلوں میں پڑ جاتا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اور اس سے نچوڑ کے طور پر جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آج مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، کہ ہمیں جو ہے وہ قرآن سے دوستی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ آیات قرآن کی عظمت اور اہمیت کو بتاتی ہیں. اور آج لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں، یہ قرآن کی طرف رخ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، قرآن کو پڑھنا پڑھانا، اس کو سمجھنا. تو قرآن والے بڑی شان والے ہیں، قرآن والے بڑی فضیلت والے ہیں. اور جب میں اور آپ بات کریں تو قرآن کی زبان میں بات کریں. مثلا میں اور آپ کیا کہتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے، زمانے کا فیشن یہ ہے، ہمارے خاندان کی رسم یہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو گمان کی پیروی ہوگی نا، یہ تو خواہشات کی پیروی ہوگی. اور یہ تو اہل مکہ بھی کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اتنی سخت سخت باتیں کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو فائدہ نہیں دے سکتی. تم نے کبھی حقیقت پر غور بھی کیا؟ تو کیا مجھے اور آپ کو حقیقت پر غور نہیں کرنا چاہیے کہ میں اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، یا عام مسلمان جو زندگی گزار رہے ہیں، کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم سب کو سوچنا چاہیے. زیادہ تر یہی بات ہے کہ دل یہ چاہتا ہے، آخری بیٹا ہے، گج واج کے خوشیاں مناواں گی، ساری رسمیں کرنی ہیں، کوئی فوت ہو جائے تو بھی، کہ ہمارے گھر دانے ختم ہو گئے ہیں کہ ہم تیسرا، دسواں اور چالیسواں نہ کریں، ساتواں نہ کریں. اور بہت سی ایسی رسمیں ہیں، بہت سی ایسی بدعتیں ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں جاری کر لی ہیں. تو سب سے پہلی بات کیا ہے؟ قرآن سے اتنی دوستی کر لیں کہ دلیل قرآن سے لے کر آئیں، کوئی بھی بات کریں تو قرآن کی دلیل، قرآن سے دلیل کے طور پر ایک بات لے کر آئیں کہ اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے اس لیے اب ایسا نہیں ہو سکتا. تو دوسری بات یہ کہ قرآن پر عمل بڑے اعتماد کے ساتھ کریں، جرأت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کیونکہ قرآن کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ کو دی، بڑے اہتمام کے ساتھ، اور انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ رسول اللہ کو دی، اور رسول اللہ نے بڑی محبت کے ساتھ اس کو سیکھا اور اپنے صحابہ کو سکھایا. تو ہمیں بھی اس کو بوجھ سمجھ کر نہیں لینا چاہیے، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ. اطلب العلم، علم کو حاصل کریں. کب تک کرنا ہے؟ مہد سے لے کر لحد تک. فریضتاً علم کا فریضہ جو ہے، علم کا حاصل کرنا یہ فرض ہے. العلم فریضتاً علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر یہ حاصل کرنا فرض ہے. اور خیرکم من تعلم القرآن و علمہ، تو پہلی بات تو یہ ہے، اس کو مکہ کی جو دیویاں ہیں اسی کے گرد بات کرتے کرتے اصل بات کو کہیں بھول نہ جائیں. اور اصل بات کیا ہے؟ توحید کا پیغام جو ہمیں قرآن دیتا ہے، آخرت کی تیاری جو ہمیں قرآن دیتا ہے، تو قرآن سے دوستی کرنی چاہیے. دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ شرک کی جڑوں کو قرآن کاٹ رہا ہے، یہ آیتیں شرک کی جڑوں کو ختم کر رہی ہیں. تو ہماری زندگی میں بھی شرک کے جو بھی طور طریقے اور دروازے ہیں خاندان کے اندر ہیں، ان کو ختم کرنا چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ بدگمانی کی بجائے اور خواہشات کی بجائے ہوا اور زن کی بجائے قرآن کی پیروی کرنی چاہیے. اور افسوس کہ ہم جو ہیں کیا کرتے ہیں، گمان کی پیروی کرتے ہیں، خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.